गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलो बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम श्रील प्रभुपाद की श्री बरसाना धाम की श्री वृंदावन धाम की नंदगांव धाम की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। तो आज के इस 22 जनवरी के शाम के सत्संग में आपका स्वागत है। श्री बरसाना धाम की तो पूरे ब्रह्मांड में भगवान को पृथ्वी लोक बहुत पसंद है और इसलिए पसंद है क्योंकि पृथ्वी लोक पर ऐसी अनुकूल स्थिति है जिससे भगवान के पास पहुंचने के लिए बहुत अनुकूल वातावरण निर्माण होता है। दुख ज़्यादा होते हैं सुख कम होते हैं। दुख ज़्यादा होने से भगवान की याद बनी रहने की अनुकूलता होती है। इसलिए स्वर्ग लोकों के देवता भी पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए आतुर रहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर कम समय में भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्ग लोकों में हजारों लाखों कभी कभी करोड़ों साल भी जिंदगी होती है और बहुत ज़्यादा स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में भोग की व्यवस्थाएं होती है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और इस भोग की इतनी सूक्ष्म और स्थूल तीव्र व्यवस्था होने की वजह से भजन इतना अनुकूल नहीं होता है। जैसे एक बार दुर्वासा मुनि आए महाप्रसादी माला वैकुंठ से लेकर आए लेकिन इंद्र वो समय अप्सरा का नृत्य देखने में मग्न थे। माला ली और हाथी को दे दी, हाथी ने पैर में कुचल दी और तत्क्षण सारा साम्राज्य नष्ट हो गया इंद्र का। तो ऐसे क्या कहते हैं विक्षेप यानी डिस्ट्रैक्टिंग टेम्पटेशंस, बहुत मन को बहकाने वाले बहुत सारे ऐसे मोह वहाँ पर होते हैं। और पाताल लोक में सब राक्षस लोग रहते हैं नीचे, तो भगवान के प्रतिकूल भाव रख के वहाँ पर ऐश्वर्य का भोग करते हैं। और मनुष्य लोग पृथ्वी पर रहते हैं, और मनुष्य का जीवन, पृथ्वी का जीवन सभी जीवन में श्रेष्ठ माना गया है, सभी जीवनों में देवताओं से भी श्रेष्ठ मनुष्य का जीवन माना गया है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में जितनी भक्ति करने की आसानी है उतनी किसी भी देवता के जीवन में नहीं है। तपस्या करने में, योग करने में, साधना सिद्धि करने में राक्षस दानव दैत्य और देवता सभी लोग निपुण हैं, कलाओं में निपुण हैं, हर पृष्ठ में निपुण हैं, लेकिन भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए उनको पृथ्वी लोक ही और मनुष्य जन्म अनुकूल लगता है। तो भगवान को भी इसीलिए वो पसंद है। फिर पूरे पृथ्वी लोक में भगवान को भारतवर्ष बहुत पसंद है। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए कई जन्मों तक पुण्य करना पड़ता है, तब जाकर भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म मिलता है। बहुत ही दुर्लभ जन्म है ये, और खास करके कलयुग में अति दुर्लभ है। कलयुग में पृथ्वी पर भारत भूमि में जन्म लेना, क्योंकि भारत भूमि में इतने सारे संतों ने, हजारों और करोड़ों संतों ने, अनंत भाषाएं बोलने वाले संतों ने यहाँ पर जन्म लिया है, उनके चरणों के स्पर्श से ये भूमि पुनीत है, और स्वयं भगवान भी यहाँ पर ही अवतार लेना पसंद करते हैं। आपने कभी भारतवर्ष के बाहर भगवान का अवतार के बारे में सुना है क्या? दो उनके भक्त जो है वो दो जगह पर आ गए पश्चिम जगत में, लेकिन बाकी सारे भक्त और भगवान के सारे अवतार जितने भी अवतार हैं वो सब भारतवर्ष में हुए। तो ये भूमि भगवान के स्वयं के और भगवान के अन्य अवतारों के और भगवान के अनंत भक्तों के चरणों के स्पर्श से पवित्र हुई भूमि है। यहाँ के रज जो है वो बहुत कीमती है। फिर उसमें भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, बहुत जगह पर अवतार लेते हैं, उसमें भगवान बनकर आते हैं, अपने भगवान को, पद को, ऐश्वर्य को साथ में लेकर आते हैं, जैसे द्वारकाधीश बनकर आते हैं, या बद्री विशाल में तपस्या के ऐश्वर्य को लेकर आते हैं, जगन्नाथपुरी में विरह की लीला करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान भगवान के ही भाव में रहते हैं। रंगनाथ में भी भगवान के भाव में निद्रा लेते हैं, लेकिन रहते हैं भगवान के भाव में। लेकिन वृंदावन भूमि उनको ये सारे भारतवर्ष में बहुत प्रिय है, क्योंकि वहाँ पर वो, उनके लिए एक आसानी होती है, वहाँ पर वो भगवान बनकर नहीं आते, वहाँ पर वो एक सामान्य व्यक्ति बनकर आते हैं, खेल खेलते हैं, किसी के भाई है, किसी की बहन है, किसी का पुत्र है, किसी का प्रियकर है, किसी का दोस्त है, हर प्रकार के रस्म में वहाँ पर रहते हैं, लेकिन भगवान की भगवत्ता जो है वो छोड़कर वहाँ पर आते हैं। इसलिए वृंदावन धाम जो है वो बहुत ही विशेष धाम है भगवान का। भगवान स्वयं कहते हैं पंचयोजनम एव अस्ति वनम में देह रूपकम, ये पंचयोजन का है। एक योजन 8 मील का होता है, 8 कोस का होता है, 1 कोस 2 मील का होता है, इस प्रकार से करीब 84 क्रोस ये भूमि है। और भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि ये मेरा स्वयं खुद का शरीर है, स्वयं देह रूपकम, ये मेरा स्वयं देह है। महेश कोचरेकर जरा बघा लोक त्याच्या समोर समोर येतात पुन्हा पुन्हा। सो श्रीमद भागवत में भी कहा गया है, दशम स्कंद में 5वें अध्याय में 18वें श्लोक में लिखा गया है, हरेर निवास आत्मगुणई रमा क्रीडम भुन नुपह। इसका मतलब यह है कि श्री वृंदावन धाम ये रमा देवी, लक्ष्मी देवी का क्रीड़ा स्थल बन गया। इसके 3 कारण बताते हैं। एक है कि वहां पर हरेर निवास, हमेशा हरि निवास करते हैं। वृंदावनम एकम पादम न गच्छति, एक कदम भी भगवान वृंदावन धाम को छोड़ के बाहर नहीं जाते, यानी कि भगवान के अनेक भाव रूप हैं, एक ऐश्वर्य रूप है, एक लीला रूप है, तो वो माधुर्य जो वृंदावन का है वो भाव अलग होता है, उसमें ऐश्वर्य का समावेश नहीं होता है। ऐश्वर्य होता भी है तो वो प्रधान नहीं होता है, ऐश्वर्य उस माधुर्य के प्रभाव में दब जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। अगर सभी लोग एक साथ उसको बंद कर दे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जो जो बजेगा वो ही बंद करते रहेगा। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो ये वृंदावन धाम में भगवान का ऐश्वर्य तो होता है, लेकिन माधुर्य के सामने वह ऐश्वर्य अपना प्रभाव दिखा नहीं सकता है, वह ऐश्वर्य प्रकट नहीं हो सकता है। ये इस भूमि की बहुत महानता है। भगवान ने बहुत कोशिश भी किया, यहाँ पर कई जगह पर कोशिश किया। एक बार तो विष्णु बन के खड़े हो गए, लेकिन राधा रानी का माधुर्य के सामने उनके दो भुजा जो थे वो पिघल गए पूरे। वृंदावन ने उन्होंने गोवर्धन को उठाया तो भी एक ऐश्वर्य दिखाया, सब लोग चकित हो गए। तो कोई कह रहे देवता है, कोई कहते ऋषि है, कोई कहते सिद्ध पुरुष है, कोई कहते भगवान का अवतार है, कोई कहते देवता है। लेकिन उनकी चर्चा का अंत यह हुआ कि सब लोग हंस हंस के पेट पकड़ के लोटपोट हो गए और कहते ये कैसे सिद्ध हो सकता है, ये तो गड़गड़ाहट से भी डरता है बादलों की, और ये तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो पेशाब करके चले आता है, किसी बच्चों को चिमटा निकालता है, कान में पानी डालता है, इसको भूख सहन नहीं होती है, इसको इंद्रियों के ऊपर काबू नहीं है, ये कैसे देवता सिद्ध और महापुरुष हो सकता है। ऐसे करके जो उन्होंने बात कही थी ऐश्वर्य वाली, उन्होंने अपने माधुर्य भाव से काट कर उसको हंस हंस के सब लोग घर चले गए, भूल गए कि ये भगवान। यशोदा देवी को उन्होंने मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखाया तो यशोदा देवी एकदम हैरान हो गई, अरे बाप रे मैंने कितनी बार डांटा इसको। तो भगवान को भी अच्छा लगा नहीं, अरे माँ का भाव पूरा वात्सल्य से मिलकर पूरा एकदम ऐश्वर्य का हो गया, तुरंत वो वेदों के वचन श्लोक गाने लगी प्रार्थना के रूप में, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। तो तुरंत उन्हें मुंह बंद कर दिया, एक स्माइल दे दिया, तुरंत सब भूल गए क्या देखा था उसके अंदर। इस तरह से मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ कि कोशिश करने पर भी जब जब भगवान थोड़ा बहुत ऐश्वर्य दिखाते हैं तो वहाँ वो टिक नहीं पाता है, तुरंत नष्ट हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, और माधुर्य का ही प्रभाव रहता है। जैसे कि हम लोग अभी ठंडी है ना, आपके पास घी होगा, नारियल का तेल होगा, थोड़ा सा गर्म करो और छोड़ दो उसको, कुछ देर वापस वापस वैसे ही हो जाएगा, घनीभूत हो जाएगा। ये जिस तरह पे यहाँ की ठंड अपने घी और तेल को वैसे जमाए रखती है ना, वैसे यहाँ का माधुर्य जो है वो ऐश्वर्य को दबाए रखता है, ऐश्वर्य दिखाई नहीं पड़ता है। और भगवान को भी यहाँ पर आना अच्छा लगता है, क्योंकि हर जगह पर जाते हैं तो भगवान के रूप में उनको वंदन करते हैं, वैकुंठ में करते हैं, द्वारका में करते हैं, जगन्नाथपुरी में करते हैं, श्रृंग क्षेत्र में करते हैं, बद्री विशाल में करते हैं, अयोध्या में करते हैं, नरसिम्हा क्षेत्र में करते हैं, सब लोग वंदन करते हैं भगवान के रूप में। उनको भी अपनी स्पेस चाहिए, स्पेस जगह चाहिए जिसमें वो एक अपनेपन से रह सकते हैं, जैसा चाहे वैसा रह सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी समझो कोई देश का प्रधानमंत्री है, उसको गुल्ली डंडा खेलने का दिल हुआ, कोई गुल्ली डंडा खेलने का, उसको कोई पाप थोड़ी है, लेकिन उसके लिए जगह चाहिए ना, ऐसे ही जगह चाहिए जहाँ पर वो गुल्ली डंडा खेल सकता है, कोई देखने वाला ना हो, उसके फ्रेंड हो जो छोटे मोटे उम्र वाले उसके जब भी थे तभी, उनका गांव हो और कोई ज़्यादा पहचानने वाला नहीं हो कि कौन है, तो वहाँ पर वो आराम से समझो अभी उसको लगा कि पतंग उड़ाना चाहिए संक्रांति के दिन, तो अभी कहाँ वो पतंग उड़ाएंगे, पूरे CNN में आ जाएगा, BBC पे देखो कितना टाइम पास कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, पतंग उड़ा रहे हैं। लेकिन उनको पतंग उड़ाने का दिल होता है तो पतंग उड़ाने की सुविधा भी होनी चाहिए और जगह भी होनी चाहिए प्राइवेट। वैसे भगवान को भी अपना एक व्यक्तित्व है भगवान का, वो हमेशा ऑफिस में बैठ सकते हैं क्या आप लोग 24 आवर्स? एनीबडी कैन स्टे इन ऑफिस फॉर 24 आवर्स? कभी घर आएंगे तो उसका बच्चा सर पे चढ़ेगा, उसकी शेंडी खींचेगा तो अच्छा लगेगा उसको, थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। बीवी को डांटेगी तो देर से क्यों आए, तो मैं कब से बैठी हूँ, जलेबी निकाल के रखी हूँ, कितनी ठंडी हो गई, मैं भी और गर्म निकालने का, तभी भी नहीं आए तुम, अच्छा लगता है उनको। सब लोग सलाम करते हैं उससे, हमने कोई एक गाली देगा बीच में पत्नी ने तो अच्छा लगता है उसको। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि वैकुंठ का इतना सारा ऐश्वर्य छोड़कर वृंदावन में चोरी करके माखन और छाछ खाने के लिए आते हो, और बाद में कहते हैं कि वेदों में इतनी प्रार्थनाएं हैं, हजारों श्लोकों वाली प्रार्थनाएं हैं, वो सुनकर मुझे इतना आनंद नहीं आता है जितना ब्रजवासियों की गाली खाकर मुझे आता है, इसलिए बार बार शरारते करते रहता हूं ताकि बार बार मुझे वो गाली देते रहे और मैं उसको आनंद को पाते रहूं, क्योंकि उन गालियों में जो आनंद है वो वैदिक ऋचाओं में भी नहीं है, सुक्तों में भी नहीं है। तो भगवान के व्यक्तित्व को समझना चाहिए। भगवान सब जगह राज करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनको सब जगह राज करने में आनंद आता होगा। उनको आनंद आता तब है जब लोग उनको भगवान के रूप में पहचानते नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रज में ये भाव है, हाँ वृंदावन की बात कर रहे हैं, ब्रज में ये भाव है, कई जगह पर वो गेट पर ही मंदिर के गोस्वामी लोग कह देते हैं, देखो एक वादा है आप वो करके अंदर जाना, हमारे ठाकुर से कुछ मांगना नहीं आप, और देना है तो ही अंदर जाना, हमारे लाला को आशीर्वाद देना, क्योंकि सब जगह पर भगवान से मांगने की आदत लोगों को होती है ना, ये दो वो दो ऐसा होने दो ऐसा होने दो, भक्ति दो प्रेम दो ये भी मांगते रहते हैं। लेकिन ब्रज की उपासना अलग है, ब्रज की उपासना यह है कि भगवान को भी देते हैं वो। जैसे भगवान का जन्म हुआ था ना, तो यशोदा बाई ने उसको दिखाना ही मना कर दिया, नहीं 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 नजर लग जाएगी नजर लग जाएगी, तो उन्होंने छुपा लिया भगवान को। फिर भगवान ने पैर मुक्त कर लिए, फिर अपना मुख मुक्त कर लिया और दिखा दिया दर्शन उनको। तो सब गोपियां बताती हैं यशोदा मैया को, देखो देखो हम कुछ मांगने के लिए नहीं आए हैं, हमारे सूप को देखो हमारे परात को देखो, सारे केवल नजर उतारने के साहित्य को लेकर आए, ऐसे बोलते हो। और जब नजर उतारते सब लोग एक एक गोपियां, और खूब आशीर्वाद देते भगवान को, कुछ मांगते नहीं है कि ऐसे करो हमारे लिए वैसे करो, खूब आशीर्वाद देते हैं। तो ये जो है ना, अभी देखो कोई ध्यानी व्यक्ति होता है ना, उसके ऑफिस में जो भी आता है मांगने के लिए आता है, धनी व्यक्ति को पता होता है ना, कोई उसको मिलना चाहता है, सर अपॉइंटमेंट चाहिए, उसको पता है कि भैया और कुछ मांगेगा, मेरे पास ये गौशाला है मंदिर है आश्रम है अनाथ आश्रम है महिला आश्रम है ये वो है। उसको भी ब्रेक चाहिए, कहीं भी ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर लोग उसको देना चाहते हैं। जैसे राधानाथ स्वामी महाराज अभी एक बड़े विवाह में गए थे, उधर हमारे भारत के सबसे बड़े विख्यात क्रिकेटर आए थे सचिन तेंदुलकर, उन्होंने हमारे महाराज को प्रणाम किया। तो महाराज ने कहा कि मैं जानता हूँ आप बड़े क्रिकेटर हो और पूरे विश्व में आपकी ख्याति है, और मैं ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, हमारे यहाँ पर कुछ बेसबॉल नाम का चीज़ होती है वो आपके क्रिकेट से मिलती जुलती है, मैं आपसे हृदय से प्रेम करता हूँ लेकिन आपके क्रिकेटर होने के नाते नहीं, एक व्यक्ति के नाते आई लव यू एज अ पर्सन। तो वो फूट फूट कर रोया उधर। वो कहते हैं कि मेरे पिताजी की मुझे याद आई, मेरे पिताजी भी कहते थे कि तुम्हारे यश के लिए कीर्ति के लिए क्रिकेट की कुशलता के लिए तुम्हें विश्व सराहेगा, विश्व तुम्हारा गौरव करेगा, लेकिन जो व्यक्ति तुम पर प्रेम करेगा वो बहुत विरला होगा। और आज आपने यही बात कही है इसलिए मुझे पिताजी की याद में रोना आ रहा है। तो विख्यात व्यक्ति की ख्याति बहुत है, उनकी बहुत गौरव करते रहते हैं, लेकिन उनको इतना आनंद नहीं आता है उसके अंदर, क्योंकि सब वो जानते हैं कि मेरी ख्याति का गौरव कर रहे हैं, वो मेरी प्रसिद्धि का गौरव कर रहे हैं, मेरी कुशलता का गौरव कर रहे हैं, मेरे धन का गौरव कर रहे हैं, मेरा गौरव नहीं कर रहे हैं, मुझ पर प्रेम नहीं कर रहे। और ऐसे लोगों के कोई ऐसे विरला कोई गरीब भक्त होते हैं या तो मित्र होते हैं, उनके साथ जाकर घर पे आकर सूखी सूखी खा के आ जाते हैं, उसी में उनको आनंद आता है। जो रोज पंच पकवान न खाते हैं वो एक दिल के यार को झोपड़ी में जाके गांव में उसके जाकर क्या भाकरी और ठेसा खा के आते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है, उनके लिए आनंद की परवणी कहते हैं उसको, मतलब फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस। हमारे भगवान भी ऐसे हैं, दुनिया भर में जहां पर भी जाते हैं सब जगह भगवान भगवान करके उनका गौरव होता है। वैकुंठ अनंत वैकुंठ में रहते हैं वहां पर भी उनका गौरव होते रहता है, लेकिन कहीं डांट नहीं पड़ती उनको, वो डांट का अनुभव करने के लिए वो ब्रज में आते हैं। यहां तक कि ये भूमि इतनी पवित्र है कि यहां पर भगवान ने कितने भेष धारण किए हैं प्रेम की वजह से, कभी वो माला फूल माला वाली बनकर आते हैं, कभी वो मेहंदी रचाने वाले बनकर आते हैं, कभी ब्रह्मचारी बनकर आते हैं, हमेशा श्यामा सखी बनकर बरसाने में आते हैं, कितना ढोंग रचाते हैं, उसको छद्म लीला कहते हैं, अनंत छद्म रूप है उनके, छद्म यानी भूल भुलैया, वो नहीं है वो ऐसे बनकर आते हैं, कभी सन्यासी बैरागी बनकर आते हैं, क्या क्या बनकर आते हैं, राधा रानी क्रोध करते कभी मान करते तो फिर उनको रिझाने के लिए क्या क्या नाचने वाले बनकर आते हैं, मोर बनकर आते हैं, कभी क्या बनकर आते हैं, ऐसा जो सुविधा है उनके लिए स्वतंत्र है वो कहाँ मिलता है ब्रज के बिना, इसलिए ब्रज विशेष है। अभी समझो वैकुंठ में बैठे हैं लक्ष्मी के साथ और उनको तुरंत मोर बनकर नाचने की इच्छा हुई, तो नाच सकते क्या वो? यू कैन नॉट डांस। लोग क्या कहेंगे, सारे लोग बैठे हुए ऋषि मुनि गाय ब्राह्मण वृंद जो है वो वेदों की ऋचा गा रहे हैं, उधर कहाँ पर वो मोर बनकर, दिल भी होगा तो भी दबाना पड़ेगा उनको, इच्छा अभी नहीं है, अलग रूप में करना पड़ेगा उसको। इसलिए वृंदावन धाम श्रेष्ठ है। यहाँ पर ना भगवान नाम के व्यक्ति जो है ना वो भगवान न बनते हुए आते हैं, एक सामान्य व्यक्ति बनना चाहते हैं। परम पुरुषोत्तम जो है वो सामान्य व्यक्ति बनकर अपना एक निजी क्या प्राइवेट जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आते हैं। बहुत ही पावरफुल भूमि है ये। यहाँ पर भगवान भी अपने हृदय का मंतव्य और भाव व्यक्त करने की अनुकूलता अनुभव करते हैं। ये एक्सपीरियंसेस द फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिज हार्ट वॉट एवर इट इज फ्रॉम विद इन एंड इन साइड। तो प्रथम कारण यह है कि हरि यहां पर निवास करते हैं, इसलिए ये लक्ष्मी देवी का क्रीड़ा स्थल हो गया। दूसरा है कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वन में देह रूपकम, साक्षात भगवान का शरीर है ये। ये बलराम जी का शरीर भी है क्योंकि शांतरस में वो धाम के रूप में विस्तार होते हैं अपने आप को, भगवान के लिए एक ऐसी स्थिति निर्माण करते हैं जिसमें भगवान आकर लीला करें, तो बलवान बलराम का भी वो विस्तार है। और बलराम का विस्तार होते के साथ में भगवान के शरीर का भी विस्तार है, वो वृंदा देवी का हृदय भी है, वो सब कुछ एक साथ में है, क्योंकि दिव्य है ना, दिव्य वस्तु एक साथ में, विरोधी वस्तु एक साथ में रह सकती है वहां पर। बोथ कॉन्ट्राडिक्टिंग सिचुएशंस कैन एग्जिस्ट इन अ डिवाइन सिचुएशन, समझ में आपको आया? एकदम विरोधी है दोनों चीजें, लेकिन वो एक जगह पर दिव्यता के ऊपर रह सकती है, दिव्यता कहते ही उसको है, जहां पर विरोधी वस्तुएं भी एक साथ निवास करती हैं उसको दिव्य कहते हैं। अगर शेर हिरण को गले लगाता है तो उसको दिव्य कहते हैं, क्योंकि आमतौर पर शेर हिरण को खाता है, लेकिन दिव्यता उत्पन्न होने पर कई मुनियों के ऐसे आश्रम है, जाजली मुनि, वशिष्ठ मुनि, दुर्वासा मुनि, ऐसे मुनि का आश्रम है जहां पर शेर हिरण को गले लगाता है, सिंह हाथी को गले लगाता है, जो उनके शत्रु है। तो यह साक्षात भगवान का शरीर है। और तीसरी बात, यहां पर रमा देवी क्रीड़ा करती है, क्योंकि यहां पर यह धाम जो है ना, ये हरि जैसे ही गुणों का आविर्भाव करता है, धाम के गुण हरि के गुण से मिलते जुलते हैं, हरि के गुण धाम के, क्योंकि स्वयं हरि ही धाम है, धाम ही हरि है। नाम रूप लीला और धाम, ये चार चीजें भगवान की हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भगवान का ही नाम है, लेकिन भगवान के सामने उनसे कई गुना अधिक प्रभावी, कृपालु, दयालु, करुणामय है। भगवान का ही नाम है वो, लेकिन भगवान का नाम उनसे अधिक दयालु है। वैसे ही भगवान का रूप उनसे अधिक दयालु है, भगवान का धाम भी उनसे अधिक दयालु है। और एक वस्तु है, वो है भगवान की लीला, वो भी भगवान से अधिक दयालु है। भगवान से भी अधिक भगवान की लीला हमको भगवान से जोड़ती है, आप मानते हैं इस बात को? अगर मैं भगवान का वर्णन करते जाऊंगा तो आपको कुछ देर बाद नींद आएगी, लेकिन भगवान का कथा बताऊंगा तो आप रसमय भाव से सुनेंगे उसको। तो भगवान ने ये चार चीजें क्यों बनाई? ताकि जो जीव सामान्य है, जो इनको आसानी से उनका आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा, तो उनका आसानी से आकर्षण उत्पन्न करने के लिए नाम रूप लीला धाम बना दिया। वैसे भगवान का रूप तो अनंत है, तो एक मूर्ति में कैसे आप उसको बांध के रख सकते हैं, सीमित आकार में कैसे बांध सकते हैं उसको? लेकिन क्योंकि वो भगवान है, वो अनंत है, फिर भी अपने आप को सीमित आकार में बांध सकते हैं क्योंकि वो भगवान है। और ऐसे कहते हैं कि भगवान का रूप इतना अनंत और दिव्य है, फिर भी हम जैसे बद्ध जीवों को अनुभूति मिले, इसलिए वो सीमित साकार रूप में अपने आप को लाते हैं, ताकि हम अपने बद्ध इंद्रियों से भी उनके साथ संबंध जोड़ सकते हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान का एक नाम अधोक्षज है। उसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, जिनके द्वारा हम लोग इस दुनिया का क्या कहते हैं उसको, संवेदना ग्रहण करते हैं, दृष्टि रूप में, गंध रूप में, हाँ, और किस रूप में, स्पर्श रूप में और स्वाद रूप में और श्रवण रूप में, ये चारों पांचों माध्यम से हम आसपास का जो वातावरण उसकी संवेदना ग्रहण करते हैं और समझते हैं ज्ञान के रूप में कि क्या चल रहा है, व्हाट इज इट। लेकिन भगवान का वर्णन ऐसा है कि इन पंचेंद्रियों के क्षमता में भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। अधोक्षज का मतलब क्या है, इंद्रियों के द्वारा भगवान को हम समझ नहीं सकते हैं, जो हमारी बद्ध अवस्था की इंद्रियां हैं। जब तक वो पूर्णता शुद्ध न हो जाए तब तक वो भगवान का अनुभूति नहीं कर सकते। तो अभी बड़ा गड़बड़ हो गया ना ये अभी, अरे कब शुद्ध हो गए हमारी इंद्रियां, कब हमारी मन शुद्ध होगा, कब हमारी आत्मा शुद्ध होगी, और तब तक कितने करोड़ों जन्म बीतेंगे, तब तक भगवान की अनुभूति नहीं होगी तो कैसे चलेगा। तो भगवान इतने दयालु बनते हैं कि इंद्रियों की बद्ध अवस्था में भी भगवान एक सीमित आकार में अपने आप को डाल देते हैं, ताकि बद्ध अवस्था में भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको श्रृंगार कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, उनकी आरती उतार सकते हैं, और उस विग्रह के माध्यम से वो आपकी भावनाओं को आदान प्रदान भी थोड़ा बहुत क्यों नहीं हो कर सकते हैं। आज भी हमारे मन में इतने काम विकार हैं, इतने लोभ विकार हैं, इतने अहंकार है, फिर भी जब भगवान का श्रृंगार करते हैं तो हमको पता चलता है कि आज नाराज है, खुश है, ये है वो है। कभी सपने में आके बताते हैं हमने पानी नहीं रखा, हम देखे उठते देखते तो अरे हाँ पानी रखने को भूल गए, तो प्रतिसाद देते हैं वो। यही भगवान के रूप का महात्म्य है, और धाम भी उसी प्रकार से है। इतना विशाल धाम है, हमको एक आंख में देख सकते हैं कि आप हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे तो भी पूरा वृंदावन ग्रैस्प नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर गए भी और देखा भी आपने, देखिए इतना विस्तृत रूप में भगवान प्रकट हो गए हैं, एक भूमि की रूप में, एक एक प्लेटफॉर्म के रूप में, और वो भी आपको भगवान जैसे, भगवान के विग्रह जैसे आदान प्रदान करता है, ये उसकी विशेषता है। और धाम आपको भगवान से भी अधिक कृपा करेगा। जब ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए थे, मैं बताऊंगा आज कहानी आपको उसकी, उस समय एक वर्णन में ऐसे भी आता है कि भगवान के सामने गिड़गिड़ाने के बाद भी भगवान ने क्षमा नहीं किया उनको, क्योंकि इंद्र ने तो इतना भयंकर अपराध किया लेकिन सभी लोगों को इकट्ठा किया था, और इन्होंने जो भी किया उसमें सबको जुदा कर दिया। भगवान के लिए और कोई दुख की बात नहीं है इससे बड़ी कि मेरे भक्तों से मुझे जुदा कर दिया, इससे बड़ी दुख की बात कोई नहीं है। भगवान कुछ भी सह सकते हैं लेकिन भक्तों का अपना विरह सह नहीं सकते हैं। चले गए वो द्वारका में, लेकिन कभी राधा रानी, गोपी, गोपाल, ग्वाल बाल, माई मैया, इनको भूलना भुला नहीं पाए वो। उद्धव को आन दे के बताते हैं, मैं शपथ लेता हूं कि मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा उनको, ब्रजवासियों को। तो कहते हैं कि बाद में ब्रह्मा जी ने ब्रज की दंडवती परिक्रमा की है। मतलब क्या क्या, इस रज में अपने चतुर्मुखी शीश वाले शरीर को लगा लगा के अष्टांग दंडवत करते 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 वो पूरा ब्रज का परिक्रमा किया, तब जाके इस अपराध से मुक्त हो गए वो। तो ये रज का आश्रय जो है ना, ये रज जो है इस भूमि की, इतनी पावरफुल है कि किसी भी प्रकार के पाप हमने किए होंगे तो उसको मुक्त करा सकती है, धो सकती है, शुद्ध करा सकती है। साधुगण ऐसे बताते हैं कि ये जो वृंदावन धाम है, इसकी रज जो है, इसका एक कण अगर आपको खरीदना है पूरे वैकुंठों का, मैं तो ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा, ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, और ऐसे 14 लोकों का एक सेट को ब्रह्मांड कहते हैं, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड इस भौतिक जगत में है, उसके परे विरजा नदी है, उसके परे ब्रह्म ज्योति है, और ब्रह्म ज्योति में अनंत वैकुंठ तैर रहे हैं, अनंत वैकुंठ में अनंत विष्णु रूप वहां पर राज्य कर रहे हैं, और इतना ऐश्वर्य वहां पर है। मैं आपको बताता हूं, एक झलक देता हूं उसकी ऐश्वर्य की। एक वैकुंठ में एक लक्ष्मी ने एक बार झूठ मूठ का झगड़ा किया विष्णु से, ऐसे ही प्रेम प्रेम में, तो जो भी हुआ उसमें से एक कंगन टूटा उनका, तो एक कंगन टूटा तो उसने वो टूटा हुआ कंगन ऐसे गुस्से में फेंक दिया। कहते वो टूटे हुए कंगन पर पूरे भौतिक जगत के ब्रह्मांडों का इकोनॉमिक्स चल रहा है। थोड़ा सोचिए आप, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। हम लोग को यहां पर अभी लगता है कि एक व्यक्ति के पास में $160 बिलियन है, बाप रे कितने जीरो होते हैं उसके ऊपर। हमको, हमें हमेशा घर में बैठ के सोचते रहते हैं कि ये जीरो कितने होते, समझ में नहीं आता इतने, इतना द्रव्य उनके पास में। लेकिन वो तो पृथ्वी का एक व्यक्ति है, सारे लोगों का धन इकट्ठा करेंगे तो कितना हो जाएगा? अरे वो तो एक पृथ्वी लोक का धन है, स्वर्ग लोगों का, इंद्र का, तो एक धन का ये विचार करेंगे तो ये सारा इकट्ठा हुआ धन भी तुच्छ है उसके सामने। ब्रह्मा जी के पास जाएंगे तो उनका, इंद्र का सारा धन तुच्छ है उनके सामने, इतना ऐश्वर्य सूक्ष्म रूप स्थूल रूप में उपलब्ध है। फिर ये पूरा ब्रह्मांड का ईश्वर हो गया। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ये सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का और सारे वैकुंठों, सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो अर्थशास्त्र है वो सब वो टूटे हुए कंगन पे चल रहे हैं। और वो केवल वो एक ही कंगन पहन के नहीं आई थी वो विष्णु को मिलने के लिए, उसके दोनों हाथों में कई कंगन थे, पैरों में कई घुंघरू थे, गले में कई हार थे, सर पे कई अलंकार थे, कानों में कितने सारे कुंडल थे, हाथों में कितनी अंगूठियां थी, बाजू बंद कलाई बंद सब उसके शरीर में लथपथ थी वो कुंभ से। और क्या कहते हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानो, ऐसे अनंत करोड़ों लक्ष्मियां लथपथ सोने से और गहनों से अलंकारों से, ऐसी लथपथ लक्ष्मियां भगवान की सेवा निरंतर करती रहती है। तो आप समझ सकते ना कि ऐश्वर्य क्या चीज होती है। वो जो विष्णु है, वो जो परमात्मा है, वो ये सारे ऐश्वर्यों को छोड़कर ब्रज में चोरी करने के लिए आता है। अभी अगर वो ऐश्वर्य इतनी कीमती, इतना कीमती, इतना मूल्यवान उनके लिए होता तो वो छोड़कर यहां पर माखन चुराने के लिए क्यों आते? अगर उन माखन चुराने के अंदर उस ऐश्वर्य से भी अधिक आनंद नहीं होता तो वो छोड़कर क्यों आते इधर? लॉजिक है ना, हमारा भी एक लॉजिक होता है। अभी आप लोगों ने, सब लोगों ने लहसुन प्याज भी छोड़ दिया है, कांदा लहसुन भी, ये सब छोड़ दिया है, मांस मछली छोड़ दिया है, और जब करते हैं मंदिर में आते हैं, पिक्चर नहीं देखते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, क्योंकि जो जीवन आप आज जी रहे हो उसमें आपको कल के जीवन से अधिक आनंद मिल रहा है, इसलिए आप उसको छोड़ पा रहे हो, नहीं तो कैसे छोड़ पाएंगे? बच्चा भी कोई खिलौना छोड़ता कब है? जब उसको उससे बढ़िया खिलौना मिलता है तो वो पहले वाला खिलौना छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं, उसको तुरंत छोड़ देता है उसको, उससे श्रेष्ठ वस्तु चाहिए, तब जाकर हम उसको नीचे वाले वस्तु को छोड़ सकते हैं। तो भगवान ने भी अगर इतने बड़े ऐश्वर्य को, चकाचौंध ऐश्वर्य को छोड़ दिया है, इसका मतलब उसमें जितना आनंद है उसमें आनंद ज्यादा इधर होगा ना, इसलिए वो तो यहाँ पर सामान्य व्यक्ति बनकर आए, भगवत्ता को छोड़ के आए, भगवत पद को छोड़ के आए, जूता को छोड़ के आए, वैजयंती माला को छोड़ के आए, वैदुर्य मणि के मुकुट को छोड़ के आए, सब ऐश्वर्यों को छोड़ के आए, एक सामान्य व्यक्ति बनकर आए, मट्टी में रेंग रहे हैं, गौशाला में रेंग रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि इसमें वैकुंठ से भी अधिक आनंद प्राप्त होता है भगवान को। तो मैं ये वर्णन क्यों कर रहा था लक्ष्मियों का, एक एक करके कंगन से आगे, फिर लक्ष्मियां, फिर वैकुंठ, फिर ब्रह्मांड, अर्थशास्त्र, ये क्यों बताया? क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि ये सारा ऐश्वर्य इकट्ठा करके भी आप वृंदावन धाम की रज का एक कण कण खरीद नहीं सकते हैं। मल्टी के कण में क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट, हु केयर्स? नहीं, क्योंकि इस वृंदावन धाम के रज कण, जितने भी अनंत रज कण है, उन सभी कणों को भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ है। यहां तक नहीं, भगवान के जिह्वा का भी स्पर्श हुआ है। किसी को याद है कैसे? भगवान ने मट्टी खाई, लेकिन वो तो ब्रह्मांड घाट में खाई। मैं तो कह रहा हूं कि पूरे ब्रज के कण कण में उनके जिह्वा का स्पर्श है। वो भगवान बछड़े बने ना ब्रह्मा सम्मोहन लीला में, तो जितना कोना 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 था सब जगह जाकर घास खाया उन्होंने, अपना मुंह लगा लगा के, और साथ साथ में उसका रज भी खाया उन्होंने। देखिए आप कैसे भगवान कितना प्रेम करते हैं इस रज के ऊपर, इतना महान धाम है ये। एक बार दावानल कुंड पे हमारे परम परम गुरुदेव गौर किशोरदास बाबा जी महाराज एक प्रवचन कर रहे थे किसी को, तो उसमें से लोग जब उठे तो ऐसे 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 करने लगे, धूल को उड़ाने लगे। तो उन्होंने कहा मूर्ख व्यक्ति है तुम लोग, सब लोग इस एक एक कण की प्राप्ति करने के लिए सारे देवता लालायित रहते हैं, उनको फिर भी एक कण प्राप्त नहीं होता है। ऐसे अनंत कण तुम्हारे शरीर पर लगे हुए, अनायास ही लगे हुए हैं, बिना आयास बिना प्रयास, तो तुम झटक रहे हो उसको। इस रज से अभिषेक होना चाहिए, ये जीवन की परिपूर्णता है, ऐसे उन्होंने बताया। तो हम भी ऐसे, देखो कोई भंगी झाड़ू लगा रहा है, खुद भी नहा रहा है, हमको भी नहला रहा है वृंदावन धाम में। तो ये इस धाम का महत्व है, इस धाम में हमको सेवा मिली है। कहते हैं इस धाम के रज के कण कण में परम भक्ति और प्रेम का रहस्य छुपा हुआ है। इस कण के स्पर्श से ही वो परम प्रेम और भक्ति का रहस्य हमारे लिए खुल जाता है, ओपन हो जाता है। खाली श्रद्धा होनी चाहिए, अगर रज समझ के मिट्टी समझ के धोते रहेंगे उसको तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन सूक्ष्म रूप में अगर आप उसका भाव समझते हैं तो अगर धो भी देंगे तो भी आपको उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब दिव्य स्तर पर है, ये भौतिक स्तर पर नहीं है। हो सकता है भौतिक स्तर पर आप मिट्टी के संपर्क में आएंगे तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, थ्रोट खराब हो जाएगा आपका, नाक में इन्फेक्शन होगा, छाती में निमोनिया हो जाएगा, 15-15, 20-20 दिन तक जाने के बाद भी निमोनिया ठीक नहीं होगा यहाँ पर यात्रा करने के बाद में। लेकिन जब वो आपको रज का कर्ण जितने भी शरीर के अंदर गए हैं और एक प्रकार से फेफड़ों का रोग दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ में उन फेफड़ों के ऊपर रज के ऊपर आपको श्रद्धा है, तो सारे प्रेम का रहस्य और हृदय के अंदर भी वो प्रकाशित कर रहे हैं। ध्यान रखना इस बात को। तो रज का जो भौतिक परिणाम है वो आपके शरीर पर होगा, रज का जो दिव्य परिणाम है वो आपके आत्मा पर होगा। आपको श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे आपको यहाँ का कांटा लगा धूल से भरा हुआ तो बहुत दर्द होगा आपको, बहुत रोएंगे आप, लेकिन वो कांटा होने के दर्द से आपको कृष्ण की याद आएगी और उस भूलेंगे नहीं कि वहां पर जब गया था ना मैं, तो उधर मैं डेंटल कैंप में काम कर रहा था तो सुई गिर गई तो मेरे पाँव में घुस गई थी, तो वो आपको राधा रानी की याद दिलाती रहेगी। तो भौतिक परिणाम भौतिक स्तर पर होगा, दिव्य परिणाम आध्यात्मिक स्तर पर होगा। और हम लोग दोनों स्तर पर जागरूक रहने के लिए यहाँ पर आए हैं। भौतिक स्तर पर दर्द होगा तो याद आती रहेगी, और दिव्य स्तर पर उसकी दिव्य अनुभूति प्रेम और भक्ति की होती रहेगी। इसलिए कृपा करके विनती करता हूँ, जब आप वृंदावन धाम बरसाना धाम में निवास कर रहे हो, अपने पांचों इंद्रियों को सतर्क रखिए, कीप ऑल द सेंसेस अलर्ट एंड अलाइव, फुल ऑफ लाइफ, सतर्क रखिए अपने आप को। कथा में आने के पहले भी अच्छी तरह से मुंह धो के आइए, फ्रेश होकर आइए, ताकि थकान अगर होगी तो भी वो चली जाएगी और आप लोग अपने इंद्रियों को सतर्क रखते हुए जो भी आपको सुनने को मिल रहा है वो आप ग्रहण कर सकते हैं, उस भाव को आत्मसात कर सकते हैं। जब हम अगर हमारी इंद्रियां अगर स्थूल हो गई हैं, एकदम से डल हो गई हैं, तो कैसे हम ग्रहण कर सकते हैं? रोग में है या तकलीफ में है, पीड़ा में है, तो नहीं सहन सकते, नहीं ग्रहण कर सकते उसको। अभी ये वृंदावन धाम इतना पावरफुल है कि नारद मुनि स्वयं बता रहे हैं कि वृंदावनस्य संयोगात पुनस्त्वं तरुणी नवा वृंदावन से संयोगात, वृंदावन का संयोग यानी संपर्क प्राप्त होने से भक्ति देवी में तारुण्य आ गया है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च, कि इतना ये गौरवशाली वृंदावन धाम है कि जो भक्ति, ऐसे लिखा है श्लोक में, महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात में गुजरते गुजरते जो बुढ़ी हो गई थी, वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुकी थी, और वृंदावन में आते ही नवचरित तारुण्य को प्राप्त कर गई वो। और केवल तारुण्य को प्राप्त नहीं किया, भक्ति ने यहाँ पर भक्तिर नृत्यति यत्र च, यहाँ पर भक्ति नृत्य करती है आनंद विभोर होकर, यानी प्रत्यक्ष भक्ति की प्रक्रिया जो है उसको भी पुनर्जीवन तारुण्य चिर तारुण्य प्राप्त होता है वृंदावन भूमि का संपर्क करते ही। और फिर जब गोकुल से नंद बाबा निर्णय लेते हैं कि अभी हम यहाँ पे बहुत कष्ट है, रोज राक्षस आके पीड़ा दे रहा है, पता नहीं कृष्ण भगवान को बलराम जी को काफ़ी यहाँ पर संकट है, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, चलो चलते हैं हम लोग, तो सब लोग पूछते कहाँ जाना है, तो हम वृंदावन जाएंगे। तो वहाँ पर वर्णन आता है बहुत सुंदर, जब वो चर्चा होके वो निकल रहे हैं तो नंद बाबा बता रहे हैं कि ये वृंदावन धाम जो है ना, जो सबको आनंद देते हैं कृष्ण बलराम, सब जीवों को आनंद अल्लाह देते हैं, उनको आनंद देने वाला ये वृंदावन धाम है। इस वृंदावन का दर्शन करते ही स्वयं श्री कृष्ण बलराम भी आनंद का अनुभव करते हैं, ये महिमा है उसकी। सबको आनंद देने वाले को भी, जो आनंद का स्रोत है, आनंद का भंडार है, आनंद घन जो व्यक्ति है, उसको भी आनंद का अनुभव कराने वाला ये वृंदावन है जिसमें हम लोग यहां पर सेवा करने के लिए आए। फिर देखिए वृंदावन की महिमा, जब राधा रानी सुन रही थी, भगवान कृष्ण ऐलान कर रहे थे, घोषणा कर रहे थे, मैं आऊंगा कंस का नाश करने के लिए, राक्षसों का उद्धार करने के लिए आऊंगा, पृथ्वी पर आकर अवतार लूंगा, आप लोग जाना, सब लोग यदुकुल में, वृष्णि कुल में, वृंदावन धाम में, ब्रज कुल में, गोकुल में जन्म लेना और तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ। तो राजा रानी बेहोश हो गई। तो भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या बात हुई, आप बेहोश क्यों हो गए? जगाया उनको, पूछा, तो कहती है, यत्र वृंदावन नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मे न मनः सुखम। जहां पर वृंदावन नहीं है, जहां पर यमुना नदी नहीं बहती है, उसका शीतल स्फटिक जल नहीं बहता है, जहां पर सुंदर गोवर्धन पर्वत दर्शन नहीं देता है, उसका सान्निध्य नहीं होता है, ऐसी जगह पर मुझे कण मात्र का सुख का अनुभव नहीं होता है। तो ये वृंदावन धाम राधा रानी को इतना प्रिय है, जो कृष्ण को भी सुख देने वाली है, उसको भी ये सुख देता है। श्री वृंदावन धाम, श्री यमुना जी और गोवर्धन, इसका सान्निध्य यहाँ पर है। बोले, आप अभी फिजिकली उसके पास में नहीं होंगे, यमुना जी के और गोवर्धन के, लेकिन आपके निकट है वो दिव्य रूप में, क्योंकि यहीं पर निवास है उनका, उनकी आभा मंडल सब जगह फैला हुआ है, यमुना जी का, गोवर्धन का, वृंदावन धाम का। कोई इसमें डिफरेंस नहीं है कि गोवर्धन और ये थोड़ा डिफरेंट है, ये बाकी रह गया। जिस भी जगह पर आप रह रहे हो, उस जगह पर पूरा लाभ आपको, टोटालिटी कंप्लीट पूर्णत्व का लाभ आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये सब फिजिकल नहीं है, दैहिक नहीं है, ये स्पिरिचुअल है, ये दिव्य है, इसको दिव्यतर स्तर पर आपको अनुभव करना पड़ेगा। तो एक वैष्णव है गोविंद स्वामी नाम के, वो कहते हैं कि वैकुंठ में मुझे क्यों जाना चाहिए, आई डोंट वांट टू गो टू वैकुंठ, क्योंकि वहां पर क्या है, ना बंसीवट है, ना यमुना है, ना गोवर्धन है, ना नंद महाराज है, ना यशोदा है, ना गायें हैं, ना बछड़े हैं, ना कुंज है, ना लता है, ना कल्प वृक्ष है, ना मोर वहां पर सुंदर ध्वनि कर रहे हैं, वहां पर भगवान की मुरली की ध्वनि नहीं है। हाँ, वैकुंठ भगवान की मुरली बजाते हैं क्या? भगवान द्वारका में मुरली लेके गए थे क्या? सब सीरियल में गलत दिखाते हैं कि वहां पर वो युधिष्ठिर महाराज के कक्ष में आके मुरली लेके आ रहे हैं, और मुरली लेके उनको उपदेश कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, लेकिन द्वारका में हाँ मुरली का कोई काम नहीं है, मुरली मोरपंख ये सब द्वारका में कोई काम नहीं है उसका, वनमाला ये भी द्वारका में नहीं है, बिन मुरली वनमाल चंद्रिका इससे क्या काम द्वारका में, वैकुंठ में क्या काम है उसका। तो ऐसे कह रहे हैं कि वहां पर ना मुरली की आवाज है, ना वनमाला है भगवान के गले में, वहां पर होते रोमांच उपजत निर्माण नहीं होते, यानी कि जो अति प्रेम का अनुभव है, उत्कट अनुभव है, उससे रोमांच होता है, वो रोमांच वहां पर वैकुंठ में नहीं है, इसलिए मुझे वैकुंठ में नहीं जाना है, ऐसे बोलते हैं। क्या काम है हमारा वैकुंठ में? मुझे कथा याद आ रही इसके रूप में, अभी थोड़ा निर्देश कर सकते हैं उस कथा की ओर विस्तार रूप में जाने के बदले में। जब वरुण देव ने, वरुण देव के सैनिकों ने नंद बाबा को अरेस्ट कर लिया ना, कैद कर लिया ना, क्योंकि वो द्वादशी के प्रथम प्रहर के पहले ही नदी में उतर गए थे, एकादशी के रात्रि प्रहर को समाप्त होकर द्वादशी का प्रथम प्रहर शुरू होने के पहले ही वो नदी में गए थे, ऐसा उनका टेक्निकल आर्गुमेंट था वरुण के सैनिकों का। लेकिन भागवतकार कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, वो समय पर बराबर गए थे, लेकिन वरुण देव को कुछ बहाना चाहिए था भगवान का दर्शन करने का, ये उसका अंदर का कारण है। तो वरुण के सैनिक उसको अरेस्ट करके लेके जाते हैं, तो आप जानते हैं वहां पर बहुत लीला होती है, भगवान के पास चरणों में गिरते हैं वरुण देव, उनको सिंहासन में बिठाते हैं, नंद बाबा की भी पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनको सबको नए वस्त्र देते हैं, भेंट देते हैं, और फिर वो चले जाते हैं वहां से नंद बाबा को लेकर, जो गुम हो गए ना सब ब्रजवासी, नाराज है, दुखी है, अरे नंद बाबा यहाँ पे गए थे, यहाँ पे कदम दिख रहे हैं, इसके आगे कदम दिखाई नहीं पड़ रहे, अरे मगरमच्छ खा गए नंद बाबा को। तो उनका पीड़ा वेदना नष्ट करने के लिए भगवान ने छलांग लगाया, वरुण लोक में गए और भगवान को ले, बाबा को लेकर आए। तो बीच में कृष्ण भगवान ने नंद बाबा को वैकुंठ का दर्शन कराया, ठीक है, और फिर उनको दर्शन करा के लेके आए। अभी नंद बाबा जो है बड़े एकदम खुश थे, एकदम वैकुंठ को देख के आए, सबको बताने लगे वैकुंठ का दर्शन किया, तो सारे नाराज हो गए ब्रजवासी, हमने क्या अपराध किया है, हमको भी दिखाओ। तो बोल रहे क्या करोगे। अच्छा, एक आश्चर्य की बात ऐसी है कि वो जल के भीतर से दोनों बाहर आए, लेकिन सब ब्रजवासी देख रहे हैं कि ये दोनों के वस्त्र गीले बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सूखे हैं, उनको समझ में नहीं आया कैसे कैसे रहस्य ये हो गया। फिर वो अभी जिद किया बहुत उन्होंने, तो उन्होंने कहा क्या करोगे वैकुंठ जाके, नहीं 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 आपने इनको किया, हमने कोई अपराध किया, हमको भी दिखाओ। तो उन्होंने उनको वैकुंठ का दर्शन कराया, आंख बंद करके बोलो, आंख बंद करो, आंख बंद की आंख खोलो तो सब वैकुंठ में। आपको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा क्या? उनको ना बिल्कुल भी अच्छा लगा नहीं क्योंकि वो जैसे ही वैकुंठ में प्रकट हो गए ना वो सब लोग, अरे बड़ी सभा, सबड़े चकाचौंध कपड़े पहन के, अलंकार पहन के, मुकुट पहन के, और इतनी रानियां उतने अलंकार पहन के, देवी जैसी सब रानियां हैं, सब जो सबका इतना प्रकाश है, इतना ऐश्वर्य है, और ये तो सब ठीक है, फिर भी एक नया देखने को अच्छा लगता है। कोई गांव का आदमी शहर में आएगा तो भी उनको अच्छा लगता है, होटल मॉल वॉल देख के जरा आनंद आता है। लेकिन जो इष्ट है वो बहुत दूर ऊपर सिंहासन पर बैठा है, वो जो राधा रानी है वो भी एकदम लक्ष्मी वक्ष्मी बनकर पूरा रूप बदल करके श्रृंगार करके बैठी हुई है, और ये सब लोग बोल रहे हैं अरे चलो वैकुंठ के देवता को मिलके आते हैं। तो ले सैनिक बोलते हैं कहाँ जा रहे हो आप, ये गांव नहीं है, वैकुंठ है, यहाँ पर वैकुंठ अधिपति को मिलने के लिए ऐसा आसान नहीं है। तो उन्हें बहुत कोशिश की, अरे हम तो ब्रिज से आए, हम तो ऐसे हैं वैसे, हमारा लाला है, हमारा फ्रेंड है, सब बहुत कुछ बताया। बोला हम नहीं जानते यहाँ पर आपको फ्रेंड वेंड, दूर के दूर से दर्शन करो, प्रार्थना करना है तो करो यहीं से। बोले कैसा देवता है तुम्हारा वैकुंठ का, बात भी करने को नहीं मिलता नहीं, हमारा वृंदावन का देवता कितना बढ़िया है, जब चाहे बात करो, गले लगाओ, चुम्मा लो उसका जो करना है करो। कुछ ही क्षणों में बोले अरे हमें नहीं रहना है यहाँ पर, सब लोग का एकमत हो गया कुछ ही क्षणों में। यहाँ देखो कोई गांव का आदमी शहर आ गया तो क्या क्या, ये लो क्या, खिलौना लो क्या, कपड़ा लो क्या, कुछ मुकुट ले लो क्या, और कुछ ले लो, जूता ले लो, कितना टेम्पटेशन रहता है ना उसके। और आप लोग शहर के लोग यहाँ पर आके गली गली में घुसकर भी कुछ ले ले देते रहते हैं हमेशा आपके दुकान में, कितना टेम्पटेशन रहता है। लेकिन ये ग्वाल बालों को जरा सा भी आनंद नहीं आया। बोले जिस भूमि के प्रमुख देवता को हम मिल ही सकते नहीं है, उस भूमि में रह के मतलब क्या है, चलना है हमको, वहीं जाना है। तो आवाज आई आंख बंद करो, तो उन तुरंत आंख बंद कर ली और आंख खोलो, आंख खोल लिया तो सामने कन्हैया, अरे गले लगा दिया, कहाँ गया था तू वैकुंठनाथ बनकर, पता नहीं इतना दूर गया था, नहीं जाना है हमको वैकुंठ में। ये ब्रजवासियों का भाव है, उनको वो ऐश्वर्य में इतनी सी भी रुचि नहीं है, यही इनकी महानता है। कोई भी दुनिया का इंद्रियों को सुख देने वाला ऐश्वर्य इनको मोहता नहीं है, कभी भी कभी मोहने लेता है इनको। उनका ध्यान है ना पूरा फिक्स रहता है कृष्ण भगवान के ऊपर, कॉन्स्टेंट फिक्स्चर, कोई उस ध्यान को हिला नहीं सकता है, इतनी गहराई है उसके अंदर, इस ध्यान के अंदर इतनी गहराई है कि कोई भी वस्तु, कोई भी मोहक वस्तु उनके ध्यान को विक्षेपित नहीं कर सकती। यहां तक कि गोपियां भी खुद कहती हैं, जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्रही। जयति ते अधिकम, कहते कि आप जयति यानी आपका जन्म होने की वजह से ये भूमि जो है इतनी अधिक गौरवशाली बन गई है। जन्मना व्रजा यानी आपके जन्म में, जो व्रज में जन्म हो गया इसकी वजह से। श्रयत इंद्रिया, इंदिरा यानी लक्ष्मी देवी यहीं पर निवास करती है हमेशा। शश्वदत्री, शाश्वत रूप में निवास करती है। जब भगवान का जन्म हुआ ना तो लक्ष्मी जी वहां प्रकट हो गए भगवान के सामने, उन्होंने कहा जाओ यहां पर क्या कर रही हो, गोकुल जाओ, नंद बाबा के यहां पर अपना क्या कहते हैं प्रभाव प्रकाशित करो, मेरे जन्म उत्सव की तैयारी करो। तो अचानक एकदम वैभव आ गया गोकुल में, लक्ष्मी देवी भी जमुना जी के बीच में चली है, इसलिए एक कारण है कमल क्यों खिल गए थे, क्योंकि उनका भी नाम कमलिनी है और उनके हाथ में भी एक कमल होता है। तो कमल सब वंश, कमल वंश बहुत खुश हो गए कि हमारी देवी जो है, जिस जो हमारे एक भाई को अपने हाथ में लेती है, वो अभी जा रही है, अभी वो निवास करेगी गोकुल में, अपना प्रभाव प्रकाशित करेगी, तो हमें भी उनका स्वागत करना चाहिए उस आनंद के रूप में कि हम भी बहुत खुश हैं कि आप आ रही हो। तो सब कमल खिल गए रात में, बीच रात में। तो वो लक्ष्मी देवी हमेशा सूक्ष्म रूप में यहां पर निवास करती है। जो भी चाहिए ब्रजवासियों को, जो भी उनके लीला के लिए संपन्न करने के लिए आवश्यक है, वो सब प्रदान करती रहती है। और एक रूप में भी रहती है वो, वैकुंठ छोड़ के आती है वो, ऐसा कोई कथा नहीं आज के तारीख में कि लक्ष्मी देवी ने भगवान के चरण छोड़ दिए हो, क्योंकि वो आचार्य हैं उसकी, पाद सेवनम की, स्वयं आचार्य हैं खुद। लेकिन जब भगवान की मुरली बजती है ना तो भी अपने क्या कहते हैं उसको कंपोजर यानी अपने आप को संभाल नहीं पाती हो। भगवान के दिव्य चरण कमल जो है वो छोड़कर वो पृथ्वी पे आती है और जहाँ पर भगवान मुरली बजाकर रास करने जा रहे हैं वहाँ पर प्रवेश करना चाहती है, उनको रोका जाता है कि आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, आपको गोपी बनना पड़ेगा। तो वो गोपी बन नहीं पाई। वो एक तो लाक्षणिक लीला है वो हमको समझाने के लिए। लक्ष्मी देवी तो बड़ी महान है लेकिन हमको दिखाने के लिए वो कर नहीं पाई, गोपी बन नहीं पाई, गोबर को उठा नहीं पाई, गाय को धोवन कर नहीं पाई। तो वो बेल वन में गई और वहाँ पर उसने तपस्या करना आरंभ किया। तो उस रूप में भी वहां पर शाश्वत निवास कर रही है वो। तो तात्पर्य क्या है इसका कि ऐश्वर्य संपन्न भक्तों को भी यहां पर स्थान नहीं है। जब तक प्रेम माधुर्य में वो संपृक्त नहीं हो जाते हैं तब तक यहां पर किसी को प्रवेश नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेम माधुर्य वाले ही लोगों की यहां पर निवास की शक्ति है, ऐसा ही धाम है। और इस धाम के कई और विशेषताएं हैं कि सारे धाम इस धाम में निवास करते हैं। देखिए आप अगर ऊपर जाएंगे ना ब्रह्म ज्योति के आगे जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के वैकुंठ धाम आपको मिलेंगे। सब अपनी अपनी जगह पर है, कोई मिक्सचर नहीं है कि दो क्लब हो गए, दो मर्ज हो गए, चार क्लब मर्ज हो गए, अभी एक पूरा एक ही वैकुंठ हो गया, अभी सारे वैकुंठ वासियों ने मर्जर एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसा नहीं होता है। वो इधर होता है, बिजनेस जब फेल होता है तभी वो मर्ज कर देते हैं। लेकिन वहां पर सारे वैकुंठ अपनी अपनी जगह पर अपने पूरे ऐश्वर्य संपन्नता के साथ विराजमान रहते हैं। उसके आगे आप जाएंगे ना तो वहां पर अयोध्या, दिव्य अयोध्या है। उसके आगे आप जाएंगे दिव्य द्वारका है। उसके आप जाएंगे दिव्य मथुरा है। अपने अपने स्थान पर कोई मिक्सचर नहीं है, अपने अपने भाव है उसके अंदर, अपग्रेडिंग यानी कि ऊपर उन्नति करते हुए। उसके आगे गौलोक धाम है, लेकिन वही गौलोक धाम का राधा रानी के जिद करने की वजह से 84 कोस का हिस्सा जब भगवान ने पृथ्वी पर स्थिर कराया गोवर्धन यमुना जी के साथ में, तो उसमें जितने भी तीर्थ और जितने भी धाम हैं सबको आश्रय दे दिया उन्होंने। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, गया कुंड, सेतु बंद, रामेश्वरम, श्रीलंका और जितने भी 84,000 तीर्थ कहे गए हैं वो सारे तीर्थों को उन्होंने, राधा कुंड, श्याम कुंड, विमल कुंड, सब जगह पर आश्रय दिया उनको। ये बताने के लिए कि ये भौम वृंदावन इतना श्रेष्ठ है भौतिक दुनिया में लेकिन सभी धामों में श्रेष्ठ है, क्योंकि सारे धाम भी यहां पर इस धाम का आश्रय लेने के लिए आते हैं और यही रहते हैं। एक रूप में अपनी जगह पर सेवा कर रहे हैं लेकिन दूसरे रूप में यहां पर चिरंतन अपने आप को पोषण प्राप्त करने के लिए यहां पर निवास कर रहे हैं। तभी समय तो बहुत हो गया लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी उपलक्ष्य में एक कथा आपको बता दूँ, संक्षेप को ना लेकिन बता दूँ। आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी यहाँ के विशेष व्यक्तिमत्व हैं बरसाना धाम के। कई जगह पर कई कथाएं आती हैं कि वो यहाँ पर पर्वत कैसे बने। एक कथा आती है कि वो उन्होंने सत्ययुग के आरंभ में ही 60,000 और सत्ययुग के अंत में ही 60,000 120,000 साल तपस्या किया था, भगवान ने दर्शन दिया, वरदान दिया, यहाँ पर उनको पर्वत बना दिया। दूसरी कथा आती है अनसुया के पास में ब्रह्मा विष्णु महेश गए थे उसके सतीत्व का परीक्षा करने के लिए, तो बालक बन गए वहाँ पर, बालक बन के बहुत दिन रहे, उनकी पत्नियाँ गई उनको वापस लाने के लिए तो उन्होंने वरदान मांगा, तो फिर उन्होंने वरदान दिया कि हाँ आप हमारे पुत्र बन सकते हो। तो विष्णु के द्वारा दत्तात्रेय जन्म लिया, चंद्र के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा चंद्र जन्म लिया अनसुया की गोद में, और शिवजी के द्वारा दुर्वासा मुनि ने जन्म लिया अनसुया की गोद में। लेकिन साथ साथ उन्होंने शाप भी दिया उनको कि आप तीनों ने बहुत वात्सल्य प्रेम मेरा अनुभव किया, मैंने भी पुत्र का अनुभव किया आपसे, लेकिन आपने मेरे सतीत्व की परीक्षा करने का प्रयास किया, इसलिए मैं आपको शाप देती हूँ कि आप तीनों पत्थर बन जाएंगे। तो ये ब्रह्मा यहाँ पर पत्थर बने, विष्णु गोवर्धन पत्थर बने और शंकर जी नंदीश्वर पत्थर बने। और ये भी वर्णन आता है पुराणों में कि प्रभु रामचंद्र ने किसी एक त्रेतायुग में इन तीनों पर्वतों को स्थापन किया ब्रज में। यहाँ पर सीता देवी भी यहाँ पर आई है, सीता देवी ने भी जमुना जी का पूजन किया है, वनवास में आई थी वो, जमुना जी को कहती है कि जब मैं वनवास से मुक्त हो जाऊंगी तो अनंत गायों के साथ मैं आपकी सेवा करूंगी, सीता देवी ने भी जमुना जी को वादा किया है। तो प्रभु रामचंद्र भी आए हैं ब्रज में, ये समझना कि प्रभु रामचंद्र नहीं आए हैं। किसी एक त्रेता में स्थापना किया है तीनों पर्वतों का, और हमारे त्रेता में जब वनवास में अभी लीला किया था उन्होंने, अभी इसी त्रेता युग में, तब भी वनवास में वो यमुना जी के किनारे भी दोनों आए हैं। तो ये दूसरी कथा है। तीसरी कथा ये भी है कि जब भगवान के बालकों को उन्होंने चुराया, उसके बाद उनको लगा कि मुझे ना यहीं पर निवास करना चाहिए, तो एक जगह ऐसा भी लिखा है कि उसके वजह से वो यहाँ पर आके निवास करने लगे। अभी बताता हूँ कहानी कैसे आपकी। तो संक्षेप में भगवान ने अघासुर का वध किया। अघासुर बहुत बड़ा सर्प था, अष्टावक्र मुनि का उसने पहले देवता रूप में अपमान किया था, तो अष्टावक्र मुनि ने उसको शाप दिया था कि तुम अजगर बन जाओगे, तो वो अजगर बनकर हाहाकार मचा दिया उसने। इतना बलवान था वो, इतना बलवान था कि सभी देवता लोग उसको उसके केवल होने से ही अपना राज्य छोड़कर गुफाओं में छुप छुप के रहते थे, इतना भयंकर दरारा था उसका। और उसको हमारे भगवान ने मार दिया, तो स्वर्ग लोक तक खबर पहुंच गई ऐसे ऐसे घूमते घूमते। तो ब्रह्मा जी के कान में खबर पड़ी, अरे अघासुर के जिसके वजह से सारे देवता लोग कांप रहे थे, उसका एक बालक ने वध कर दिया ब्रज में। और भी खबर आई कि वो बालक है ना, वो स्वयं कृष्ण है। तो दोनों बात पर उनका यकीन नहीं हुआ, तो बोले मैं देखता हूँ जाके कौन है वो बालक। यकीन नहीं हो रहा है कि अघासुर जैसे भयंकर राक्षस का एक 7 साल का बालक कैसे वध कर सकता है। तो आए तो क्या, यहाँ पर अघासुर तो मरा हुआ दिखाई उनको, लेकिन क्या देखा कि सब लोग बैठकर आनंद ले रहे हैं, कमलाकार बैठकर सुंदर सुंदर व्यंजन खा रहे हैं। और जो 7 साल के बालक का जिक्र हुआ था कि इसने उसको मारा था, वो बालक क्या कर रहा है, सारे बालकों के मुंह से खाया हुआ आध खाया हुआ अन्न निकाल निकाल कर खा रहा है। ये उसको बात कुछ जची नहीं। यही प्रॉब्लम ऐश्वर्य का होता है, जब ऐश्वर्य में हम लोग होते हैं ना, ऐश्वर्य भाव में, तो ये सब प्रेम की बातें समझ नहीं सकते। ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे लोकों में तो इतनी बड़ी घंटियां बजती हैं, इतने सारे श्लोक बजते हैं, इतने सारे विधियों का मंत्रों का उच्चारण होता है, तब जाकर हमारे ठाकुर को हम भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद में भी वो विधि होती है, उसके बाद में हमारे मुंह तक पहुंचता है वो। और ये ग्वाल बालक इतने अनपढ़, गंवार, गाय चराने वाले, गोबर गोमूत्र में लिपने वाले अपने आप को, इनके मुंह के अंदर का आधा खाया हुआ खाना निकाल निकाल के भगवान पीछे भाग भाग के खा रहे उनके, ये कोई ठाकुर है, क्योंकि भगवान हो सकता है। अच्छा, वो भी भगवान को प्रेम से अपने मुंह से खा खा के ये बहुत बढ़िया करके निकाल के खिला रहे, और भगवान भी अपने मुंह से जो खा रहे वो निकाल के उनको खिला रहे, ये तो बिल्कुल उनको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस। उतने में वहां पर ना मधुमंगल आया। मधुमंगल थोड़ा दूर था, उसके पास बड़ा पात्र था लस्सी का। वो देख रहा है कि सब लोग बांट के खा रहे हैं, मेरे पास केवल एक पात्र लस्सी है, अगर इनके अंदर घुस जाऊंगा तो मेरे को सबको देना पड़ेगा, या तो देना पड़ेगा तो ये छीन लेंगे, तो बेहतर यह है कि इनके मंडली में जाने के पहले ही सब पी लेता हूं। तो थोड़ा दूर गए, वो घटाघट घटाघट पी रहा है, तो सब लोगों ने देख लिया, मधुमंगल देखो मधुमंगल वहां पर रखे लस्सी पी रहा है, चलो आक्रमण। तबने उस पर आक्रमण किया, तब तक वो आखिरी घूट पी रहा था, आखिरी घूट भी गिला नहीं उसने, निकला नहीं है, तो गलगुच्छ में भर गया उसके। तो किसी ने जाकर उसको गोलचा मारा गाल पे, जो अंदर जाना था वो बाहर आया पिचकारी के रूप में। सामने कन्हैया खड़े थे, उन्होंने हाथ ऐसा उंजुल अंजुल बनाई और उसको पकड़ा और पी लिया उसको। ये देखकर ब्रह्मा जी क्लीन बोल्ड हो गए, ये तो आखिरी सिक्सर था। इसको देखकर ब्रह्मा जी कुछ, बाकी सब कुछ उसके चार जो है ना मस्तिष्क, वो चार मस्तिष्क में उसको प्रोसेस कर रहे थे वो, ये इसको कैसे समझे, कैसे इंटरप्रेट करे इसको। हाँ, जो चार विश्व में इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी इतना ज्ञान छुपा हुआ है, जिसके द्वारा पूरा विश्व का निर्माण होता है, सारी योनियों का निर्माण होता है, हर एक जीव हमारे आपके शरीर का निर्माण होता है, वो सारा जो मेंदू है ना उसके अंदर वो प्रोसेस कर रहे थे कि ये क्या है। समझ में नहीं आ रहा था उनको। उसके आखिर दणका गिरा उसके अंदर, जब भी भगवान ने अपने अंजुल में मधुमंगल के मुंह से निकली हुई दूध की लस्सी की धार ग्रहण कर ली, तो वो बड़े भ्रमित हो गए। तो उन्होंने क्या किया, वो आनंद ले रहे थे सब लोग, अब भगवान देखो कैसे कितना प्रेम करते अपने भक्तों पर, उन्हें पहले बछड़े चुरा लिए, क्योंकि इतना आनंद में उनको बछड़ों का ध्यान नहीं रहा, बछड़े अपने चरते चरते आगे दूर चले गए, तो गायब कर दिए उन्होंने, चुरा लिए उनको। तो अचानक काल बालों को ध्यान में आया, थोड़ा पेट वेट भर गया, तो अरे बछड़े कहाँ हैं, तो देखेंगे तो बछड़े भी गायब। तो भगवान ने कहा आप अपने आप को डिस्टर्ब मत करो, आप बैठे रहो, डोंट डिस्टर्ब योर हैप्पीनेस, आई एम देयर, आई एम योर सर्वेंट, मैं आपका दास हूं, आप चिंता मत करना, मैं बछड़ों को ढूंढ के लाता हूं। और भगवान देखो आप इतने बड़े आनंद के समुदाय से भगवान निकले हैं बाहर, अपने बछड़ों को ग्वाल बालों को खुशियों के अंदर व्यवधान नहीं होना चाहिए, इसलिए भगवान जाते हैं ढूंढने के लिए, हाथ में ऐसा भात और दही लेकर ऐसा ढूंढ रहे हैं कहाँ है मेरे, कहाँ है बछड़े। तो देखते हैं कि कुछ समय पर ऐसे बछड़े के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, आगे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो समझ में आता है कि ब्रह्मा जी के करतूत है ये। बोले कोई बात नहीं, लौट के आते तो क्या देखते हैं, सारे ग्वाल बाल भी गायब, क्योंकि जैसे भगवान वहां जाते हैं तो ग्वाल बालों को चुरा लेते हैं और उनको जाकर ब्रह्मा लोक में सम्मोहन विद्या का प्रयोग करके उनको सुला देते हैं, बछड़ों को और ग्वाल बालों को। और देखते देखते अभी कौन भगवान क्या है देखते हैं अभी जाके। तो लौट के आते तो क्या देखते हैं, सारे ग्वाल बाल वहीं पर है, सारे बछड़े भी वहीं पर है, वही आनंद चल रहा है, वही चिना झपटी चल रही है, वो झपक रहा है, वो झपक रहा है, वो लड्डू खा रहा है, वो बर्फी खा रहा है, संदेश खा रहा है। फिर ये क्या बात है, ये कोई जादू टोना थोड़ी है, जाके वापस ब्रह्मा लोक में देखते हैं तो उधर देखते तो उधर भी सोए हुए पूरे ऐसे निद्रस्त निश्चेष्ट पड़े हुए। भागवत में लिखा है, क्योंकि समय बहुत कम था ना उनके पास, जाके आए और लीला समाप्त हो गया। लेकिन अन्य पुराणों में वर्णन किया गर्ग संहिता में कि वो कई बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे देख रहे थे, हर बार लग रहे थे अरे बालक बहुत सिद्ध आत्मा है क्या, यहाँ सोए हुए दिखाई पड़ते हैं और मैं जाते ही सिद्धि का उपयोग करके यहाँ प्रकट हो जाते हैं, ऐसे कुछ है क्या। वो खुद पूरे भ्रमित हो गए, वो उनके भ्रम में और डालने के लिए जो वहां पर सोके आए सो रहे हैं वो देख के आ रहे हैं ना, उनको यहाँ सब जागृत अवस्था में खेलते हुए देख रहे हैं, तो वो सारे ग्वाल बाल और सारे बछड़े एकदम विष्णु बन गए, चार भुजा वाले ऐश्वर्य संपन्न, जो उनके समझ में आता है उनकी वेवलेंथ उसमें मिलती है, हाँ हाँ ये हमारे विष्णु है भाई, पूजनीय है, वंदनीय है। तो वो देख रहे हैं तो उनके भ्रम में और भ्रम को डालने के लिए उन्होंने क्या किया, हर एक विष्णु के सामने 33 करोड़ देवताओं का एक सेट उस विष्णु का पूजन कर रहे हैं। अब इतने अनंत विष्णु है, इतने अनंत ग्वाल बाल है, वो सब चतुर्भुज विष्णु बने हुए हैं और वो सब क्या कर रहे हैं, उनका पूजन हो रहा है। उसमें हरेक में ब्रह्मा है, हरेक में विष्णु है, हरेक में विष्णु की पूजन हो रहा है, शंकर जी है, गणेश जी है, इंद्र है, कार्तिकेय, सब लोग है उसके अंदर, और बीच में कृष्ण है। तो क्या करें, समझ में आया, उसके अंदर और भ्रम डालने के लिए वो सब लोगों को गायब कर दिया उन्होंने एक क्षण के अंदर। वापस वो हाथ में दही बात लेकर ढूंढ रहे कहाँ है मेरे बछड़े, तब उनको समझ में आया कि ये हमारे भगवान है। कहते हैं वो मूर्छित हो गए उस समय, इतना ऐश्वर्य का भगवान ने प्रदर्शन किया तो वो निस्तेज से हो गए, ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस। तो कहते हैं भगवान ने उसको जगाया और भगवान ने उसको जागृत कराया और जागृत करा के उसको वृंदावन का दर्शन दिया ब्रह्मा जी को। अभी क्या हो रहा है, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूं आपको। ग्वाल बाल भी बड़े सिद्ध आत्मा है, बहुत दिखाते कुछ नहीं है वो, उन्होंने सोचा ऊपर जाने के बाद जब ले गए कि अगर हम लोग यहां उदम मचाएंगे ना तो ये ब्रह्मा लोक पृथ्वी में ढस जाएगा, ऐसा रहन दो, हम उसको ब्रह्मा जी को ना वो ब्रज में निपटा लेंगे, एक बार इसको वहां देख लेंगे, सोते रहो आराम से यहां पर, ये बताया गया है बीच में। हाँ तो फिर क्या हुआ, बीच में और एक बात हुई जो बताना जरूरी है आपको, ब्रज की महिमा, ब्रज की महिमा। ये जब जाके आए ना तो उसमें एक क्षण ब्रह्मा का समाप्त हो गया, तो एक क्षण यहाँ का एक साल था और भगवान ने सब तो रूप धारण कर लिया था, सब ग्वाल बालों का, बछड़ों का, सब खुद बने थे, वो खुद ग्वाल बाल बने और खुद बछड़े बने और उन बछड़ों के रूप में ब्रह्मा जी भी गौरव कर रहे हैं उनका। आगे जाकर क्या कर रहे हैं गौरव, कि धन्य है वो ब्रज की गायें और धन्य है वो ब्रज की गोपियां, ये हर गोपी का स्तनपान आपने किया हुआ है, क्योंकि हर बछड़ा कृष्ण थे तो हर बछड़े ने अपनी गाय गौ माता का दुग्ध पान किया और हर ग्वाल बाल अभी कृष्ण थे तो जो जो अपनी माता के पास गए उन्होंने, उन माताओं ने अपने बालक से भी अधिक अनुभव किया प्रेम का अपने बालकों पर, क्योंकि वो बालक खुद के नहीं थे, वो कृष्ण भगवान थे, तो उन्होंने उनको भी स्तनपान कराया। और ये बछड़े जो थे अपने गायों का स्तनपान तो किया ही, लेकिन जाकर पृथ्वी के ब्रजभूमि के कण कण के घास को खाया और कण कण के रज को भी ग्रहण किया उन्होंने, इतना प्रेम व्यक्त किया ब्रज भूमि के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, ब्रज के गायों के प्रति, सबको संतुष्ट कर दिया। यहां रुके नहीं वो, कृष्ण भगवान जब ये सब कृष्ण रूपी ग्वाल बाल और बछड़े बनकर घूम रहे थे ब्रज में एक साल तक, तो एक दिन कृष्ण बाबा, कृष्ण भगवान नंद बाबा के पास गए, बाबा अभी ना बहुत अच्छा मौसम है, स्टार्स भी अपने अपने जगह पर है, अभी सभी गोपियों का गोपों के साथ विवाह कर दो। क्योंकि बचे कौन थे अभी, गोपियाँ भी संत क्या कहते, बड़ी गोपियाँ दुग्धपान कर संतुष्ट हो गई थी, गायें भी दुग्धपान करा के संतुष्ट हो गई थी, ब्रज भूमि भी उनका पान करके जिह्वा का स्पर्श होकर संतुष्ट हो गई थी, अभी गोपियाँ बची थी, उनकी तमन्ना थी कि अरे हमारा विवाह कृष्ण के साथ हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। राधा रानी का एक बार विवाह का बात निकली भी थी, अरे होने ही वाला था, लेकिन पूर्णमासी ने उसमें खो डाल दिया बीच में, तो बड़ी परेशान थी। कात्यायनी का व्रत किया कि कैसे ये प्लान कैंसिल हो गया, उन्होंने कहा कि अभी वो सब स्टार सब ठीक नहीं है, अच्छा नहीं होगा, फिर मुहूर्त निकालेंगे फिर करेंगे। तो कृष्ण भगवान ने जैसे ही बोला, नंद बाबा ने राजा के रूप में अपने सारे गोपियों का विवाह सारे ग्वाल बालों से कर दिया। तो एक साल तक स्वयं कृष्ण उन गोपियों के घर में पति के रूप में रहे, और सभी गोपियों की पत्नी बनने की भगवान के स्नुषा भगवान की पत्नी बनने की इच्छाओं को उन्होंने पूर्ण कर दिया। ये सब कब हुआ, जब ब्रह्मा जी ऊपर नीचे भाग रहे हैं तब यहाँ पर लीला हो रही है। हाँ, एक जगह पर भ्रमित अवस्था है इनकी, एक जगह पर लीलाओं पर लीला रचाई जा रही है। एनीथिंग हैपन्स इन लाइफ, वी शुड ऑलवेज कीप सर्विंग कृष्णा। उसमें ऐसा हुआ वैसा हुआ करके भगवान ने सोचा क्या करूँ, मैं किसको घर पे ले जाऊँ, तुरंत विस्तार कर दिया, सबको ले गए घर पे, किसी को टेंशन नहीं दिया कि हमारे बालक गायब हो गए हैं, ब्रह्मा जी की गुफा में चोरी करके ले गए उनको, कोई किसी को टेंशन नहीं दिया, उल्टा टेंशन देने के बाद दूरी आनंद ही आनंद दिया उस बहाने, चलो अच्छा है नहीं है तो मैं अभी सबको सबकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। इसको कहते हैं लीला पुरुषोत्तम, वो किसी भी स्थिति में सुंदर आनंददायी प्रेमदायी लीलाओं को रचा सकते हैं। एवरीथिंग अनफेवरेबल इज टर्न्ड इनटू मोस्ट फेवरेबल एंड मोस्ट जॉयबल सिचुएशन बाय श्री कृष्णा। तो किसी भी मैया को पता नहीं चला कि हमारे बच्चे गायब हैं, कुछ बड़ा हादसा हो गया है और हमसे कुछ छुपाया जा रहा है, ऐसे कुछ बूबी नहीं आई उनको, है ना। उसके बाद में ब्रह्मा जी, आप जानते हैं बड़ा अध्याय है वो, ब्रह्मा जी को भगवान ने वृंदावन का वास्तविक रूप दिखाया। पहले उनकी भाषा में समझाने के लिए ऐश्वर्य दिखाया ताकि वो कनेक्ट कर सके कि यही है वो जिसको मैं बालक समझ रहा हूँ, वही मेरे परम आराध्य भगवान है। और फिर वो परम आराध्य भगवान का दर्शन करने के बाद में वो परम आराध्य भगवान अभी क्या आनंद ले रहे हैं, किस भूमि का, किस भाव का, किस लोक का, किन लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं, वो दिखाने के लिए समझाने के लिए उन्होंने उनको वृंदावन का दर्शन कराया, जिसमें बहुत गायें दौड़ रही है, गोवर्धन पर्वत है, यमुना जी स्फटिक जल सुंदर रत्नों की तरह बह रही है, सब वन कल्प वृक्षों से भरे हुए हैं, श्रिया कांता कांता परम परवो, हाँ कितना सारा वर्णन दिया, सारा दर्शन कराया उनको उन्होंने। और फिर ब्रह्मा जी जो शुरू हो गए प्रार्थना करने के लिए, फिर ये खड़े होकर सुन रहे हैं। बृहद भागवत हम बताते हैं वो कि इन्होंने आए और चुरा लिया और डिस्टर्ब कर दिया, बाद में फिर पछतावा किया तो भाई श्लोक बोलने लगे, मुझे सुनना पड़ता है खड़े होके, क्या करे बेचारे, कि मेरा मन तो आतुर है बच्चों के साथ खेलने के लिए, मैं तो देख रहा हूँ कि वो वेट कर रहे हैं मेरे लिए और ये अभी प्रार्थना चलती रही है, समाप्ति नहीं हो रही है। तो ब्रह्मा जी बड़े भाव से अपने आठ आंखों से रो रहे हैं। तो फिर सब उनका प्रार्थना वार्थना हो गया, तो ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों को बच्चों को लौटा दिया, है ना। जैसे ही ग्वाल बाल आए ना, वो पहले वाले सब गायब हो गए थे ना, उन्होंने अदृश्य कराया था उनको, तो ये आए तो भगवान को गले मिल रहे एकदम पैर से, अरे कन्हैया कन्हैया गले मिल रहे, हम लोग कहाँ थे। तभी उनको याद आई कि ब्रह्मा जी को सबक सिखाना ना अपने को, याद है ना, उन्होंने कहा था कि ऊपर इसको हम लोग नीचे देख लेंगे। तो ये स्तुति करके जा ही रहे थे तो एक बालक भागा, उसकी दाढ़ी को पकड़ा ऐसे, एक मम्मा कहाँ जा रहे हो, बैठो यहाँ पे, इस धूर में बैठो। अभी वो सब बालकों का चमत्कार तो देख चुके थे ना, अरे इनके सखा है वो, और ये हमारे परम भगवान सब कुछ भूल कर नंगे पैर घूम रहे, इनके लिए घूम रहे हैं, ये कितने महान है, हम तो दूर से प्रार्थना करते हैं उनको तभी भी कृपा नहीं होती है, ये तो कदम 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 पे उनके कंधे पे चढ़ते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, कितने प्रिय है, उनकी जुटन खा रहे हैं। अभी को सब समझ में आ रहा था कि यही भगवान है, बालक बनकर उनके मुंह के जुटन खाने के लिए यहाँ पर आए हैं वैकुंठ छोड़कर। तभी उनको ग्वाल बालों का पूरा महात्म्य पता है, तभी दाढ़ी पकड़ के तो विरोध नहीं कर सकते, उसको दाढ़ी पकड़ के बिठाया उनको, बोले इधर बैठो, तो बैठ गए वो, धूल में चुपचाप बैठ जा। उसके बाद तोष नाम का जो ग्वाल बाल था उसने कहा, अभी आए हो ना, हमसे कुछ सीख के जाओ, हमारे पास बहुत विद्या है यहाँ पर। फिर किसी ने वेणु लाया, ब्रह्मा जी को पूछा कभी वेणु बजाई क्या आपने? तो ब्रह्मा जी अभी क्या बोलेगी सोचो, उनका काम तो निर्माण करना है, किधर वेणु बजाएंगे वो उनके पास वेणु है ही नहीं। तो ग्वालवा बड़े होशियार है, पहले पूछते हैं ऐसा छद्म भाव से, क्या आपने कभी वेणु बजाया क्या? तो क्या बोलेंगे बेचारे शांत बैठे हुए। दूसरा बोलता है वेणु देखा है कभी आपने? और भी कुछ नहीं बोल रहे हैं उनको, भी क्या बोलेंगे। और तीसरा बोल रहा है अरे पोथी पन्ने से फुर्सत मिलेगी तो वेणु देखेंगे ना वो इसका मतलब क्या है? आप देखे ना ब्रह्मा जी के हाथ में पोथी है ना, एक सरस्वती के हाथ में पोथी है, पूरा ज्ञान उसके अंदर, पूरा वो सॉफ्टवेयर का नॉलेज है उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड को निर्माण करने का। तो वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। देखो आप क्या पोजिशन है ग्वाल बालों का, ग्वाल बाल अहंकार से नहीं कर रहे हैं, क्या उनकी स्थिति है ब्रह्मा के सामने, इतनी गौरवशाली स्थिति है कि ब्रह्मा को बोल रहे हैं कि इनको पोथी पढ़ने के बाद समय मिलेगा तो वेणु देखेंगे ना वो। बोले कोई बात नहीं बैठो यहाँ पर आप, कुत्ते भी शंकर जी आते हैं। तो भोले तू भी बैठ जा। और कहते हैं ये चतुर्मुख है, तुम पंचानन हो, चतुरानंद पंचानंद सहसानंद और अनंत आनंद, अगर कुछ गाना बजाना आता हो तो बजा के दिखाओ, नहीं तो चुपचाप बैठो, हम लोग एक एक मुख वाले हमको परास्त कर देंगे आप सब लोग। अभी शिव जी को कौन है, मैं कल बताया था ना आपको, गंधर्वों के परम गुरु हैं तुम्बुरु, गंधर्व लोक के उनके गुरु है शिव जी, गायन के और वादन के। वो आके बैठे उनको बोल रहे हैं कुछ बजाना बजाना आता है क्या आपको? अगर आता हो तो लगा देना, नहीं तो फिर हम आप एक एक मुख वाले आपको परास्त कर देंगे। सब देव शांत, सब जो देवता है शांत, बाकी सब भी देवता आ गए, सब लोग शांत बैठे हैं, जो अपनी अपनी कला में इतने निपुण है वो शांत बैठे हुए हैं। स्तब्धता छा गई है, जैसे जो कलाकार लोग होते हैं ना, जो गाना चाहिए वो एक तरह से स्तब्ध हो गए सब लोग, सारे देवता लोग स्तब्ध हो गए। फिर पंछी आए जो गाने में निपुण रहते, मोर चक्रवाक कोयल तोता मैना, वो सब आके ना कहते हैं वृक्ष में लाइन से पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए। और फिर ग्वाल बाल जो है ना वो गाना शुरू कर दिए भगवान के साथ में। ऊपर से ग्वाल बाल क्या बोलते हैं, अभी हमारा सरदार गाएगा, फिर देखना तुम कुछ गा सकते हो क्या उसके सामने। सरदार यानी कृष्ण भगवान आएंगे और गाएंगे, और कृष्ण भगवान और ग्वाल बालों की संगीत गोष्ठी, संगीत महासम्मेलन शुरू हुआ। और ये स्थान कौन सा है पता है आपको? श्री गढ़ो नाम का एक स्थान है, गेंदोखर जो नंदगांव के आगे है, जहाँ पर भगवान गेंद खेला करते थे। वो जो खर है, जो पानी का जलाशय है, उसको गेंदोखर कहते हैं, उस गांव को गिड़ो कहते हैं, गेंदोवा उस गांव का नाम है। वहीं से भगवान ने गेंद फेंकी थी, वो जो कालिया के दह में गिरी थी। तो सुदामा ने बहुत जिद किया था कि नहीं नहीं वही गेंद चाहिए, नहीं दूंगा, नहीं 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 वही गेंद चाहिए, बच्चे कैसे करते हैं। फिर भगवान गिड़ो से लेकर कालिया घाट गए थे वो गेंद निकालने के बहाने, फिर कालिया का मर्दन किया, वो गांव गेंदोवा है। ठीक है, तो कहते हैं नृत्यांगना भी आई, अप्सराएं भी आई, सब दंग रह गई, गंधर्व ऐसे आ करके स्तब्ध हो गए, सभी देवता स्तब्ध हो गए, मूर्ति समान हो गए, उनको देह भान भी नहीं रहा, इतना दिव्य आनंद उनको अनुभव हुआ कि ऐसा संगीत, ऐसा गीत और ऐसा वाद्य कभी हमने सुना ही नहीं था, ना कभी देखा था। सिद्ध चारण देवगण, यहां तक कि दूर दूर के वन पशु भी समीप आकर बैठते हैं और स्तब्ध हो जाते हैं। और पक्षी कौन है? वो दीर्घ काल की साधना को सफल करने के लिए वहां पर ब्रज में आकर पंछी बनकर भगवान का गायन सुन रहे हैं, पक्षी रूप बने हुए हैं। ऐसे संगीत शिक्षक, अति निपुण ग्वाल बालों के नेता श्री कृष्ण चतुरानंद पंचानंद सहस्रानंद सबको परास्त कर देते हैं। ऐसे कृष्ण को इस जगह पर गोपियां ताल देकर नचाती है छचियाबर छाछ के लिए। अभी आपको कनेक्शन समझा, कनेक्शन क्या है? वो भगवान जो देवताओं को भ्रमित कर देते हैं, उनके सामने कोई देवता गंधर्व यक्ष किन्नर किम पुरुष चाणुर क्या कहते हैं उसको चारण कोई खड़े रह सकते हैं उनके सामने, सब शब्द हो जाते हैं ब्रह्मा आदि लोग सब। वही बालक छचियाबर, यानी का मतलब मालूम है आपको छचियाबर का मतलब? छचियाबर अपने हाथ में अपने उंजल अंजुल में कितना आता है ना छाछ बीच की जगह पर, उसको छचियाबर कहते हैं। छचिया का एक्चुअली अर्थ यह है कि दही जमाने के लिए कितना दही लगता है दूध के ऊपर डालने के लिए, उसको छचियाबर कहते हैं। उतने से छाछ के लिए ये ताल बजाकर गोपियां नंद के आंगन में कृष्ण को नचाते हैं। वो ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति इन ग्वाल बालों को और गोपियों को संतुष्टि आनंद प्रदान करने के लिए एक एक छछिया भर छाछ के लिए नाचने को भी तैयार हैं। थोड़ा देते हैं और मांगते हैं तो बोलते और नाचो, फिर तालियां बजाते हैं, कंगन बजाते हैं, पायल बजाते हैं, उसकी म्यूजिक बनाते हैं, उस पर नचाते हैं उसको, और ठुमक ठुमक के पर ब्रह्म जो है ना वो गोलोकेश्वर परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम वो नाचते हैं उनको रिझाने के लिए। तो कितना ब्रज भूमि के प्रति और इस ब्रजवासियों के प्रति भगवान को स्नेह है, इसका एक परिणाम परिमाण है। तभी कुछ देर बैठिए आप थोड़ा देर, फिर ब्रह्मा जी जो है ना वो तीन श्लोक बोलते हैं बहुत सुंदर, जो मैं कल में पूरा निरूपण नहीं कर पाया, आज करके समाप्त कर देंगे। दशम स्कंद में 14वें अध्याय में ये ब्रह्म मोहन लीला का वर्णन है, उसमें 32, 33, 34 तीन श्लोक है, इसमें बहुत सुंदर वर्णन दिया है। वो क्या कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौ कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। कितने भाग्यवान है नंद गोप और सब ये ब्रजवासी लोग, परम ब्रह्म जो है श्री कृष्ण भगवान गौलोकेश्वर इनके मित्र हैं। हाउ फॉर्चुनेट आर नंदा एंड गोपाल एंड ब्रजवासी, उनके परम भाग्य का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि परमानंद यानी कि सारे दिव्य आनंद के स्रोत उनके मित्र हैं, पर ब्रह्म जो स्वयं परमात्मा है वो उनके मित्र बने हुए हैं। फिर 33 श्लोक में कहते हैं, देखिए बहुत सुंदर विचार है, आप सब सुनिए। हम जानते हैं ना कि हमारे जो इंद्रिया है ना, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, एक मन, एकादश इंद्रिय कहते हैं उनको। ये एकादश इंद्रिय जो है ये हर एक इंद्रिय की एक देवता होती है, तो शिव जी भी रहते हैं, ब्रह्मा जी भी रहते हैं, चंद्र भी रहते हैं जो मन को नियंत्रण करते हैं। ऐसे ये 11 इंद्रियों के नियंत्रक 11 देवता होते हैं। तो अभी ब्रह्मा जी ये 11 देवताओं के विषय में कुछ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, एक मन, इसकी 11 देवताएं हैं, और हम भी बहुत भाग्यवान हैं क्योंकि इनके इंद्रियों के पात्र में जो भी भगवत प्रेम का अमृत ये ग्रहण करते हैं, इन इंद्रियों के स्वामी के रूप में हम उनको भी ग्रहण करते हैं। यू अंडरस्टैंड, द कप्स ऑफ देयर इंद्रियज थ्रू विच दे एक्सपीरियंस द नेक्टर ऑफ लव ऑफ कृष्णा, बिकॉज वी आर द प्रेजाइडिंग डिटीज ऑफ दैट पात्र, वी ऑल्सो एंजॉय, इसलिए हम भी बड़े भाग्यवान हैं। ये 33rd श्लोक में कह रहे हो, क्या लिखा उसमें, एशाम तो भाग्य महिमा अच्युत तावदास्थाम एकादशैव ही वयम बत भूरि भागा, हम बड़े भाग्यवान हैं भूरि भागा। एतदृशिक चषकैर यानी कि जो इंद्रियों के पात्र है, चषक यानी कप्स, असकृत पिबामः, हम लोग पीते हैं उसको। सर्वादयो घ्री उदज मध्व अमृत समते, यानी कि इनके चरणों के रज में लीन रहने के लिए ये पात्रों से हम लोग अमृत ग्रहण करते हैं, और मधु अमृत आसव ये जो उनको प्राप्त करा रहे कृष्ण भगवान, ये इंद्रियों के स्वामी होने के नाते हम लोग भी ग्रहण पढ़ पाते हैं, इसलिए हे भगवान हम भी बड़े भाग्यवान हैं। हाउ ब्यूटिफुल वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। उसके बाद 34 श्लोक में क्या कहते हैं, तद भूरि भाग्यम यह जन्म किमपि अटव्याम। अभी ब्रह्मा जी का जो कहते हैं ना यील्ड, इस सारी लीला में ब्रह्मा जी के गोद में क्या गिरा, ब्रह्मा जी में क्या आंचल में क्या गिरा, दिस इज द यील्ड ऑफ कृष्णाज मर्सी, ध्यान से सुनना। कहते मेरा ऐसा देखने के बाद ये सब जो अनुभव किया मैंने, भ्रमित होना, फिर बाद में भ्रम से बाहर आना, बाद में वृंदावन का दर्शन करना, प्रेम के रस का अनुभव करना, ये सब का परिणाम क्या हो रहा है कि मेरा जो परम भाग्य है वो होगा जब मैं गोकुल के वन में एक तुच्छ जीव बनकर जन्म लूंगा। तद भूरि भाग्यम यह जन्म किम अपि अटव्याम, यानी अटव्याम यानी वन, इस गोकुल नाम के वन में अगर मुझे किसी भी तुच्छ रूप के जीव के रूप में जन्म मिला तो ये मेरा सद्भाग्य होगा, ऐसा मैं समझता हूं। उसे क्या होगा, ऐसा तुच्छ जीव जन्म होने के बाद में मुझे मेरे सर पे इन ब्रजवासियों की पदरज प्राप्त होगी। क्या लिखा गया है, त्वद्य अपि यत् पदरजः श्रुति मृग्यम एव। बहुत सुंदर वर्णन किया उन्होंने, इन्होंने कहा कि जब मैं ऐसा जीव प्राप्त करूंगा तो इनके भगवान के बारे में वर्णन नहीं किया है, इनके चरणों की रज प्राप्त होगी मुझे, जो भगवान को इतना जीत चुके हैं, जिनके वश में भगवान है, भगवान इनके अधीन हो चुके हैं, ऐसे लोगों की चरण रज मुझे प्राप्त हो गई, तब वो प्रेम का रहस्य मुझे भी समझ में आएगा, मैं ऐसे मूर्खता की तरह टेस्ट करने के नीचे नहीं आऊंगा परीक्षा करने के लिए। और फिर कह रहे हैं, जिनका सर्वस्व प्राण स्वयं कृष्ण भगवान मुकुंद हैं, यत जीवितम तू निखिल, मतलब पूरे जीवन का सार उनका भगवान मुकुंद है। और आगे क्या लिखा है, श्रुति मुग्यम एव, मतलब जिन भगवान को श्रुतियां यानी वेद अभी भी ढूंढ रही हैं, वेदों के माध्यम से कृष्ण प्राप्त नहीं होते, श्रीमद् भागवत के माध्यम से प्राप्त होते हैं। वेद तो ऐसे भगवान के ऐश्वर्य का ही पूजन करते रहते हैं, लेकिन असली भगवान के भाव को और भगवान को पकड़ नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान इन सारे ब्रजवासियों के सर्वस्व प्राण हैं, और जो भगवान वेदों के लिए भी अभी तक प्राप्त नहीं हुए, मृग्यम यानी ढूंढ रहे हैं वेद अभी भी उनको, ऐसे ब्रजवासियों के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए मैं वहां पर तुच्छ जन्म लेना चाहता हूं, ये मेरा परम भाग्य होगा, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी क्या विचार करने की बात है, ब्रह्मा जी यहां पर प्रत्यक्ष भगवान की कृपा प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। He doesn't want to directly approach Krishna and get his mercy। वो कृष्ण के भक्तों के चरणों के माध्यम से उनकी कृपा प्राप्त करना, ये ब्रह्मा जी की नम्रता है जो उनका यील्ड है इस लीला के बाद में। ब्रह्मा जी भक्तों की कृपा चाहते हैं, यानी भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिका रमूला, प्रेम लतिका जो है उसका मूल भक्तों की सेवा है जो परम सिद्धि का स्रोत है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने पत्थर में बनना पसंद किया। उन्होंने एक जगह कहा है कि अगर ब्रज में कहीं रास्ता बन रहा हो तो उस रास्ते के पत्थरों की श्रृंखला में मैं एक पत्थर बन जाऊं, ये मेरी इच्छा है। अधिक नम्रता, तो बाद में ब्रह्मा कहते देखो और नम्रता कह रहे हैं कि अगर समझो मेरी ऐसी योग्यता नहीं होगी कि मैं यहाँ का एक पत्थर बनूं या तुच्छ जीव बनूं या तृण का पत्थर बनूं, ऐसा नहीं समझो मुमकिन नहीं हुआ, डिस क्या कहते हैं उसका, अप्रूव नहीं हुआ मेरा, तो मेरी और एक विनती है। वो कहते हैं कि मुझे ना थोड़े ब्रज के बाहर भी चलेगा, कभी कभी ये बाहर भी आ जाएंगे तो उनका चरण रज मुझे मिल जाएगा। इमेजिन कौन है ब्रह्मा, ये जिसमें ये सब लोग लीला कर रहे हैं ना, वो सारे ब्रह्मांड के रचयिता है वो। लेकिन जब भगवान के ऐश्वर्य के आगे भगवान के प्रेम का दर्शन करते हैं, प्रेम धाम का दर्शन करते हैं, तो इतने बड़े ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति की ये मनोअवस्था है। वो सारा अपना ऐश्वर्य का अहंकार छोड़ दिया उन्होंने, भी त्याग दिया उन्होंने, अभी वो कह रहे हैं कि ब्रज के अंदर नहीं तो चलेगा, बाहर भी चलेगा, लेकिन जो मुझे जन्म आओ। ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान मुझ पर चलेंगे, ये कह रहे हैं कि उनके भक्त मुझ पर चलेंगे ताकि मुझे इनकी कृपा प्राप्त होगी। जय ब्रह्मदेव भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, ब्रजवासी बालकों की, पूरे ब्रजवासी जनों की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे श्याम।